जब हमारे साथ कोई शख्स बुरा सुलूक करता है, बुरे तरीके से बात करता है, बदतमीजी करता है या कोई ऐसी बात करता है जो दिल पे लग जाती है, तो हमें बड़ा बुरा लगता है, बड़ा बुरा एहसास होता है और हम अपने दिल में ये सोच लेते हैं कि हमने आज के बाद इस शख्स से बात नहीं करनी और कभी इससे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम कितनी ज़्यादतियाँ, कितनी बदसलूकियाँ और कितने बुरे तरीके से अपने आप के साथ पेश आते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब हम कोई गुनाह करते हैं तो हमारे ज़मीर पर, हमारे रूह पर कितना बुरा असर पड़ता है? और जब हम कोई गुनाह करते हैं, जब कोई बुरी बात करते हैं, कोई बुरा काम करते हैं, तो क्या हमारी जो रूह है वो तड़पती नहीं है, उसको बुरा नहीं लगता? या दूसरी तरफ जब हम अपने बदन का ख्याल नहीं रखते, ये हमारा जो बदन है अल्लाह ताला की एक नेमत है, जब हम सही तरीके से खाना नहीं खाते या सिगरेट नोशी करते हैं या इन्हीं वजूहात की वजह से बीमार हो जाते हैं, तो क्या ये बदसलूकी नहीं है हमारे अपने बदन के साथ? क्या ये बदतमीजी नहीं है हमारे अपने बदन के साथ, अपनी रूह के साथ? तो आइए थोड़ा सा आज इस पर सोचते हैं कि हम ये बात तो हमेशा करते रहते हैं कि दूसरों का एहतराम करें और दूसरे हमारा एहतराम करें, क्या हम अपनी रूह का और अपने बदन का एहतराम करते हैं या नहीं करते? प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश आमदीद आपको कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। और मेरे साथ हसन भी मौजूद है।
बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ होंगे नाज़रीन, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में। और बहुत ही ज़बरदस्त सुबह हम लोगों ने आगाज़ किया है, यानी इस सुबह का मैं थोड़ी देर में पहुंचा, सब यहाँ परेशान हो गए थे क्योंकि बर्फ़ काफ़ी आई हुई है तेहरान में। और मज़ेदार बात यह खुर्रम के जनूबी हिस्से में ज़्यादातर ये होता है कि कम आती है बर्फ़, शुमाली हिस्से में ज़्यादा आती है। इस दफ़ा उल्टा हो गया।
अच्छा।
और जो हम लोगों की सर्विस थी वो इसी की वजह से काफ़ी देर में आई, जो हम लोगों की गाड़ी थी, तो हम बिल्कुल यानी 2 मिनट पहले प्रोग्राम से पहुँचे। बहुत ही खूबसूरत सुबह है और टेम्परेचर मैं आपको बताता चलूँ कि -6 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त तेहरान में हो रहा है और कहा जा रहा है कि दोपहर तक वैसे कम होगा लेकिन माइनस में ही रहेगा टेम्परेचर।
जबरदस्त पारा, इसका मतलब है मौसम जो है वो जबरदस्त किस्म का मौसम है तेहरान में एंजॉय करने का। बर्फ, अगर बर्फ से खेलने का शौक है आपको तो उसका भी बड़ा अच्छा बहरहाल मौसम चल रहा है। और दहे फज चल रहा है और बहरहाल जैसे कि मैंने कहा कि 12 बहमन जो ईरानी तारीख है उसको इमाम खोने रहमतुल्लाह ईरान तशरीफ लाए,
पहली फरवरी,
जी पहली फरवरी, और ये वो तारीख है जब जो इनकलाब इस्लामी की कोशिशें थी वो पूरी तरह से तेज़ हो गई और 22 बहमन को इनकलाब जो है
10 दिन के अंदर अशरे फज्र से लिए उसका नाम रखा गया है। मुख्तलिफ वाकयात पेश आए इसमें, किसी दिन कह सकते हैं एयरफोर्स ने बगावत कर दी, दूसरा यानी जो शाह के हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी, और इसके अलावा जो वाकयात जो पेश आए वो बहुत तेज़ी से, जैसा खुर्रम ने कहा कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगे और कामयाबी की तरफ लोगों को अपनी कोशिशों का यानी कह सकते हैं कि नतीजा नज़र आने लगा। और बहुत हर तरफ खुशी पाई जाती थी और खुशी पाई जाती है, यानी आज भी अगर आप आ जाइए ईरान की सड़कों पर आप देखिए तो यकीनन आपको महसूस होगा कि हाँ एक नेशनल डे आ रहा है, एक कौमी दिन बहुत ही कोई करीब आ रहा है और उसका बहुत ज़्यादा एहतमाम भी किया जा रहा है हर तरफ। और यानी ये नहीं है कि सिर्फ हुकूमत के पैमाने पर हो बल्कि आम आवाम भी
इसके साथ भरपूर शामिल होती है। बिल्कुल सही बात की। उसकी एक जो हसन बहुत अहम वजह है, ये इंकलाब कोई ऐसा इंकलाब नहीं था कि चार लोग उठ खड़े हुए और एक ख़ास मकसद के साथ। इंकलाब इस्लामी इस वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, उसकी एक जो बहुत अहम वजह है, ये इंकलाब कोई एक मुल्क का या एक कौम का इंकलाब नहीं था, ये इंकलाब था जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का। इस वजह से जो है पूरी दुनिया इसको पहचानती है।
बिल्कुल, तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम लोग आज भी गुफ्तगू करेंगे। अभी
बिल्कुल मैं सिर्फ ये बताता चलूं कि आज जो हमारा प्रोग्राम जो है उसकी मैं जो है रंगीनियां थोड़ी सी बताता चलूं हमारे नाज़रीन को। एक तो हमारे साथ जो है गुलजमस हुसैन साहब होंगे, आपके साथ होंगे, वो गुफ्तगू करेंगे। और फोन लाइन पे हमारे साथ मौलाना सैयद सना अब्बास साहब जो है वो फ़ोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे। तो प्रोग्राम को बहरहाल पूरा देखिएगा और उम्मीद करेंगे आपको प्रोग्राम पसंद आएगा। अभी हम लोग चल रहे हैं हसन एक दास्तान देखने के लिए और उस दास्तान का जो मौजू है वो ये है कि कैसे सही तरह का इंतखाब किया जाए। चलें,
बहुत ही अच्छा है,
चलते हैं दास्तान देखते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद आपको कहता हूँ एक बार फिर और तेहरान स्टूडियो में। आप लोगों ने जो है दास्तान मुलाहिज़ा फरमाई, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। बहरहाल ये मैं एक चीज़ बताते चलूँ, वो ये है कि आप अगर कोई सवाल पूछना चाहें, कोई बात शेयर करना चाहें हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ, तो जो है हमारी फेसबुक जो है, मैं अभी यहाँ पर ऑनलाइन हूँ, facebook.com/SUT मॉर्निंग शो तो इस पर जो है बहरहाल आप हमारे साथ जो है कोई भी बात शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। हफ्ते का मौजू जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है बुरी आदत से बचना, और उसमें खुद गर्जी के बारे में हमारी बात चल रही है, उसके बारे में भी अगर आपको बात शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत हम आपके जो है ममनून होंगे। चलते हैं हसन की तरफ, और हसन जो है गुफ्तगू का सेगमेंट हमारे लिए शुरू करेंगे। जी हसन,
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम। मंगल के दिन हम लोग बुलाते हैं गुलजमस हुसैन साहब को, और यहाँ पर वो तशरीफ़ रखे हुए। एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि ख़बर के बारे में हम लोग बात करते हैं, खबर को एक बिल्कुल नए अंदाज से कोशिश करते हैं उस पर नज़र डालें, तो दो खबरें मैं आपको बता दूँ, यकीनन आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन मैं बहरहाल उसके बारे में मज़ीद बताता चलूँ कि ईरान ने परसों दो सैटेलाइट्स की रूनुमाई की और अगले साल तक ये सैटेलाइट्स भेज दी जाएंगी खला में, और एक कह सकते हैं पूरा काफ़ी पेचीदा टेक्नोलॉजी होती है सैटेलाइट्स की, उसके बारे में भी हम पूछेंगे बल्कि गुलजमस हुसैन साहब से। और एक और चीज़ जो बहुत ही यानी अहम चीज़ पेश आई है, अहम वाकया पेश आया है, वो ये है कि ईरान की चौथी टीम भी वर्ल्ड कप में चली गई, यानी इससे पहले फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल की टीम जो है वो एशिया में चैम्पियन होकर वर्ल्ड कप की जानिब गई थी, और कल रात को यानी कल जो है कंफर्म ऐसा खबर आ गई उसमें यह था कि हैंडबॉल की भी टीम ईरान की वर्ल्ड कप में पहुंच गई है, और वैसे सेमीफाइनल्स अभी हो रहे हैं हैंडबॉल के मुकाबलों के एशियन, तो वो ज़रूर देखिएगा, और यकीनन ईरान जो है वो उसमें भी यकीनन बहुत ही अच्छी पोजीशन हासिल करेगा। तो मुख्तलिफ जो मैदान हैं उसमें बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? तो खुशामदीद कहता हूं।
जी जी शुक्रिया शुक्रिया आपका शुक्रिया जी। ईरान के खेलों के मैदान में तो पता है आपको कि ईरान मुस्लिम ममालक से बहुत आगे है, और हमेशा ओलंपिक्स में मेडल जीतता है हमेशा, ये एक मुल्क मेरे ख्याल में इस्लामी ममालक में सबसे ज़्यादा जो मेडल लाते हैं वो ईरान है या तुर्की है।
जी बिल्कुल,
और दूसरे ममालक जो बड़े बड़े ममालक हैं मुसलमान दुनिया में और बहुत क्या कहते हैं बहुत पूल सरवतमंद भी हैं, उन वो भी इतने मेडल नहीं लाते, मसलन इंडोनेशिया नहीं लाता, पाकिस्तान की बड़ी आबादी है वो नहीं लाता।
हो सकता है खरीद लेते हो, उसमें क्या उनके पैसे हैं खरीद लेंगे उसमें क्या
नहीं, ये तो आप ठीक है मजाक कर रहे हैं, लेकिन वैसे भी तरक्की पजीर दुनिया में भी ईरान का एक कलीदी रोल है।
जी बिल्कुल,
खेलों की दुनिया में मसा आप देखें हिंदुस्तान कितनी बड़ी आबादी है, हिंदुस्तान के पास ईरान जैसे मेडल नहीं होते बिल्कुल, कभी होता है एक दो कभी नहीं होता बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल बड़ी तरक्की है। और दूसरी टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो इंकलाब ईरान का असल मकसद था वो था खुद मुख्तारी, अपनी खुद मुख्तारी पैदा करना टेक्नोलॉजी में, साइंस में, इल्म में, हर चीज़ में। तो सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी है ये उसी का हिस्सा है ये, और आपको पता है हम जब एयर पर हैं अभी ऑन एयर हैं तो ये जाते हैं सैटेलाइट चैनल, सैटेलाइट चैनल के जरिए
या
पूरी दुनिया में दिखाना होता है, और सैटेलाइट जो हैं सारी बड़ी सैटेलाइट जो हैं जिनको किराए पर लेके आगे वो क्या कहते हैं ब्रॉडकास्ट करते हैं वो मगरब की हैं।
जी,
तो ईरान ने और चाइना ने असल में ये कोशिश शुरू की थी पहले कि इससे इंडिपेंडेंट कैसे हुआ जाए, कि कैसे उन पर इन्हसार ना हो। आपने देखा कि प्रेस टीवी का जब मसला आया था तो उन्होंने पूरे यूरोप में और इंग्लैंड में सब में प्रेस टीवी को बैन कर दिया।
जी बिल्कुल,
ये इसलिए है कि आप उनसे ये किराए पर लेते हैं, एक उसका एक एक पैसे देते हैं और उस पर आप ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो चाइना ने ये शुरू किया था, ईरान ने भी साथ ही फिर शुरू किया कि आप अपनी सैटेलाइट्स जारी करने का भेजने का इंतजाम करें कि आप मुनहसर ना रहें उन कुव्वतों पर, जब वो चाहें आपको ब्लॉक कर सकें। जब इसीलिए तो सारी दुनिया जो है, सारी दुनिया का मीडिया जो आप सो कॉल्ड कहते हैं कि इंडिपेंडेंट मीडिया भी है, वो भी इन्हसार करता है उन्हीं सैटेलाइट पर, वो जब चाहते हैं रोक देते हैं, जब चाहते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये ईरान की एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। मगरबी जो ताकतें हैं वो इल्ज़ाम लगाती हैं कि क्योंकि ये आपको पता है ये जो सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी है ये ड्यूल यूज़ की होती है, इसी के जरिए
इंटरकॉन्टिनेंटल
मिसल्स भी जो है ना वो भी फायर किए जा सकते हैं और होते हैं। वो ईरान पर इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि ये शायद उस तरह भी इस्तेमाल हो सकती है, हो सकती है वो जना। ये किसी भी कौम का हक है कि एक टेक्नोलॉजी को उसके अरूज तक, यहाँ तक वो जा सकती है, वहाँ तक हासिल किया जाए, और यही ताकत भी है ईरान की।
एक कुछ अरसे कबल एक मिलिट्री ईरानी फ़ौज के कमांडर से गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि चाकू खुद एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन अगर एक सालेह इंसान के पास आ जाए तो, और तकवे वाले इंसान के पास आ जाए तो यकीनन वो अच्छा इस्तेमाल करेगा।
जी जी,
लेकिन उससे डरना चाहिए जो इससे पहले कत्ल कर चुका है। अगर
सही
चाकू
सही।
उसके हाथ में आ जाए वो बहुत खतरनाक होता है। तो यकीनन मेरे ख्याल में ईरान से डरने की जरूरत नहीं है,
ये
वो लोग
बहुत
खुद।
ही खूबसूरत बात है ये जो इसी से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि आपको पता है इंटरकॉन्टिनेंटल जो मिसल्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, तो इसको आइडिया को ना इसी डिबेट को वो खींचते हुए लेकर जाते हैं कि शायद ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का प्रोग्राम है इसलिए ये टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है। तो ईरान ने तो वाजे तौर पर ऐलान किया और बार बार ऐलान किया है कि ये नेशनल पॉलिसी है कि न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए जाएं।
जी
ये
बिल्कुल।
बिल्कुल ये वो कहते हैं ये इमाम का फतवा भी है और इस पर के, क्योंकि ये इंसानियत के दुश्मन है। इसी
यकीनन
इसी
बेशक।
आइडिया को आपको देखा जाए तो अगर खुदा ना खास्ता, मैं नहीं समझता, इस आइडिया को देखा जाए अगर उन लोगों ने जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किए हैं, बाकायदा इस्तेमाल किए हैं, लोगों को मारा है, शहरों दो शहर बर्बाद किए हैं, उनके खिलाफ कोई बात नहीं करता और सिर्फ ईरान की बात होती है कि इसके ऐसे अजायम हैं जो हो सकता है। मैं हैरान हुआ कि नेतन्याहू की जो इसराइली वजीर आजम है उसकी बात मैं सुन रहा था कि उसने कहा कि हमें भी पता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना रहा, लेकिन हम नहीं चाहते ये वो टेक्नोलॉजी हासिल करे कि एक दिन बना सके। ये कैसी अजीब सी बात है कि एक ऐसा रिजीम जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और कहते हैं कि 200 से 300 के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और आपको मैंने जैसे बताया था कि ज़्यादा वो सारे के सारे वेपन जो हैं सबमरीन्स पर हैं, समुंदर के अंदर हैं, यानी कोई मुल्क उस पर हमला भी करे तो वो तबाह नहीं होंगे, उसकी रिटेलिएशन की जो पावर है ना वो
वो
वापस
अपनी
हमले की
भरपूर कोशिश
वो अपनी
करेंगे
जगह पर
बस।
है।
जी
और
बिल्कुल।
यही वो रिजीम है जिसने पूरी अरब दुनिया को ये धमकी दी थी। सारी दुनिया को ये पता है कि अगर आपके पास तेल है तो हमारे पास माचिस है, ये साफ उन्होंने कहा था कि ये हम इस तरह जला सकते हैं पूरी आपको दुनिया। ईरान ने इस तरह की धमकी कभी नहीं दी कि ना दोस्तों ना हम अपने हमसायों को। ईरान की 200 साल पिछली तारीख देखें, 200 साल तारीख में कभी ईरान ने कोई
किसी
जारहियत की
को
हो या
हमला
किसी
नहीं
तरह
किया।
की, हाँ
जी
जी की हो,
बिल्कुल।
तो ये बड़ी अजीब सी बात है। बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि चाकू का इस्तेमाल जो है वो उससे डरना चाहिए जिसने इस्तेमाल किया हो,
किसी का
जिसने
कत्ल किया
कत्ल
हो।
किया
बिल्कुल
हो, तो ये
बहुत
तो
बहुत
हमसे।
शुक्रिया।
जी
इसमें एक और खबर भी थी कल, वैसे ईरान ने एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैयार किया है, हालांकि वो सिस्टम बज़ाहिर ये था कि 35 साल पहले ईरान को दिया गया था, लेकिन उसमें इतनी तब्दीली आ गई है कि वो अब वो सिस्टम नहीं रहा। मिसाल के तौर पर कई रशियन सिस्टम्स ईरान को डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिले और उसमें बहुत बड़ी तब्दीली आई थी और तकरीबन वो यानी वो चीज़ नहीं रह गई है जो पहले थी, और ईरान ने अपनी ज़रूरतों के मुताबिक उसमें बहुत बड़ी तब्दीलियां कह सकते हैं कि ईरानी ले आए उसमें और उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं दिफाई को, या एक दिफाई कुव्वत के तौर पर। चलते हैं खुर्रम के पास, मेरे ख्याल में एक ब्रेक हम लोग
जी
को लेना है।
बिल्कुल। एक वक्फा छोटा सा हम लोग लेंगे, लेकिन वक्फा जो है उसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। फ़ोन नंबर, हमारी ईमेल, हमारी वेबसाइट, ये सारा कुछ दिखाएंगे। और साथ साथ ये भी बताते चलूँ आपको कि आप अगर चाहते हैं तो आप अपना फ़ोन नंबर हमारे फेसबुक के इनबॉक्स में या ईमेल करके हमें दे दें, हम लोग खुद जो है यहाँ स्टूडियो से आपको कॉल करेंगे। चलते हैं, यहाँ पर छोटा सा वक्फा लेते हैं। जी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और अभी फौरन चलेंगे हम हसन की तरफ ताकि हसन जो है गुफ्तगू को आगे चला सकें। जी हसन
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम। गुलजमस हुसैन साहब, अशरफ फज्र के दिन
जी
चल रहे हैं, बहुत खुशी मनाई जा रही है ईरान में भी और मुहिब्बीन ईरान में, यानी
जी
ईरान
जी
के इस्लामी इंकलाब के जो चाहने
जी
वाले
जी
हैं, और इसमें शिया और सुन्नी का कोई फ़र्क नहीं है, और
जी
जहाँ कहीं जिससे भी बात होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है ईरान की इस्लामी इंकलाब की कामयाबियों से। इसकी वजह क्या है, यानी क्या चीज़ थी इसमें कि इतना लोगों को रुझान है, दुनिया भर से उससे मोहब्बत इतनी करते हैं?
देखिए, इंकलाब रूस के बाद, इंकलाब फ्रांस के बाद, ये तारीख का सबसे बड़ा वाकया था कि एक कौम ने किस तरह जो गुलाम आलमोस्ट एक गुलामी की जंजीरों में ना जकड़ी हुई थी मोहम्मद रजा शाह के ज़माने में, जिसने अपने सारे वसाइल, अपनी दौलत, अपना मुल्क एक दूसरे मुल्क के हवाले कर दिया था। यहाँ मोहम्मद रजा शाह एक पपट के तौर पर काम कर रहा था, सारी जो हुकूमत थी अमेरिका की कौम हुकूमत थी, इस मुल्क के वसाइल, इसके जखायर, इसकी हर चीज़ उनके हाथों में थी। अमेरिका से पहले आपको पता है बरतानिया के कब्ज़े में थी।
जी
बरतानिया और अमेरिका जब पहली दफ़ा डॉक्टर मुसद्दक आए हैं, मुसद्दक वज़ीर आज़म बने हैं, तो उस वक्त उन्होंने जो यही जो बीपी है, आज ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी है, इसको नेशनलाइज करने का प्रोग्राम बनाया था। तो जब इन्होंने नेशनलाइज
1950 की दहाई में,
जी 1950 1953 में असल में उसको डिपोज किया गया, 1950 की दहाई में बिल्कुल हुआ। 1950 में जब उन्होंने ये फैसला लिया, 1950 के अवाइल में बिल्कुल जब फैसला लिया कि इसको नेशनलाइज करना चाहिए, यानी आपके आपको पता उस वक्त दुनिया भर की आप अगर देखें सर्वे रिपोर्ट ईरान के बारे में देखें तो यहाँ गुर्बत थी, हर तरफ गुर्बत थी, और इतना बड़ा मुल्क को इतनी ज्यादा दौलत उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा था, वो सारी जो ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी है वो सारी इसकी ईरान की दौलत ले जा रही थी। तो ईरान ने फैसला किया डॉक्टर मुसद्दक के की रहनुमाई में कि इसको नेशनलाइज किया जाए। वो आपको पता है बहुत पॉपुलर वजीर आजम था, तो ईरान ने नेशनलाइज करने का प्रोग्राम बनाया। उसी वक्त CIA ने और MI6 ने मिलकर प्लान बनाया कि इस आदमी को हटाना है, अगर इसको ना हटाया जाए, क्योंकि ये तो ईरान की उमंगों और आरजुओं की बात करता है, ये तो हमारे मुफादात के खिलाफ बात करता है। तो आपको पता है कि 1953 में 3 सालों के अंदर अंदर उन्होंने ऐसी कैंपेन चलाई, यहाँ ऐसी कैंपेन चलाई कि उसको जो कहते हैं हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया, और दोबारा जो शाह एक नौजवान था बिल्कुल शाह को लाकर तख्त पर बिठा दिया। तो सारी वो जो आप सोचे एक अर्ली 20s में शाह था उस वक्त बिल्कुल, और इस तरह के नौजवान को क्या
एक चीज मैं बीच में बताता चलूं, यानी माफ कीजिए आपकी बात कट रही है लेकिन मैं अहम समझता हूं कि जिस वक्त यानी कू हुआ है ईरान में और शाह को वापस लाया गया, शाह उस वक्त इटली भागा हुआ था, और यकीन आपको मालूम होगा एक जुमला उसका बहुत ही मशहूर हुआ था उस वक्त के, उसने कहा था कि मैं अमरीकी, जब पता चला कि अमरीकियों ने उसके फेवर में कू कर दिया है और ईरान में उसकी हुकूमत वापस आ गई है, तो उसने कहा था कि मैं अमरीकियों का आशिक हूँ, यानी ये लफ्ज उसने इस्तेमाल किया था। तो ऐसा शख्स यानी अपने अवाम के लिए मुखलिस हो ही नहीं सकता।
नहीं, वो कैसे हो सकता था, वैसे भी मैं आपको बताऊं, ये तो बिल्कुल पपट था आपको पता है, वैसे भी जो डिक्टेटर्स होते हैं ना वो उनकी पावर्स अवाम में तो होती नहीं है, उनकी पावर कहीं और से, वो कहीं और से अखज करते हैं, तो वो मुखलस हो ही नहीं सकते कौम के साथ, वो मुखलस अपनी फैमिलीज के साथ होते हैं, अपने लोगों के साथ होते हैं, अपनी एक जो अलीट क्लास वो बना लेते हैं उनके साथ मुखलस होते हैं। तो ये तो बिल्कुल पपट था आपको पता, इटली से बिल्कुल लाए उनको, उसको इंस्टॉल किया, और वो बिल्कुल अर्ली अपनी यंग एज में था, उसको अमूरे ममलकत का कोई पता नहीं था, लेकिन उन लोगों को जो वो लाए थे उनको पता था कि अफेयर्स तो हमने चलाने हैं, तो इनको इंस्टॉल करो, इनको इंस्टॉल किया, ईरान की दौलत को खूब लूटा गया। 1953 से लेकर 1979 तक ये सारा जो सिलसिला है ये जारी रहा बिल्कुल, 1970 के शुरू में बिल्कुल ये तहरीक शुरू हुई, इंकलाब की तारीख जब लोगों ने जागना शुरू किया, जब इमाम ने खुतबात देने शुरू किए, जब एक आगही का सफर शुरू हुआ कि नहीं ये ऐसे कैसे हो सकता है, एक मुल्क जो इतना अमीर हो, जिसके पास इतनी तेल की गैस की दौलत हो, वो उसके लोग आवाम की जो ज़िंदगी है वो किस तरह अबतरी में हो, उस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ। तो इमाम ने जो लोगों ने फॉलो किया और इमाम ने जो इंकलाब लाया है वो बहुत बड़ी शिकस्त थी इंपीरियलिस्ट कुव्वतों की, जो कुव्वतें देखिए बरतानिया के जमाने में जब पहले 1950 की पहली दहाई में कॉलोनियल सिस्टम था, जब बरतानिया का सिक्का चलता था हर तरफ और लोगों मालिक पर आकर बाकायदा कब्जा कर लिया जाता था उनकी दौलत लूटने के लिए, लेकिन 1950 के बाद तकरीबन जब जंग अजीम दोम में बरतानिया और इन लोगों को शिकस्त तो नहीं हुई लेकिन इतने ज़ईफ़ हो गए, इतने कमज़ोर हो गए कि ये अपनी उस तरह की कॉलोनियल रूल को बरकरार नहीं रख सके, तो अमेरिका की सरबराही में इन्होंने एक और सिलसिला शुरू किया। वो और सिलसिला ये था कि डायरेक्ट जाकर ममालक पर कब्जा ना करें, उन ममालक में पपट्स को इंस्टॉल किया जाए जो आपके ही हुक्मरान आपके लिए ही काम करें, यानी पसे पर्दा आपके सारे लोग जो है काम कर रहे हो और बज़ाहर जो फेस हो किसी भी सामने जो है वो उन्हीं के हुक्मरान हो। तो यह सिलसिला उन्होंने जंग अजीम दुबम के बाद शुरू किया और बहुत सारे ममालिक में, ईरान तनहा नहीं था, बहुत सारे दूसरे ममालिक में थे, लेकिन जो इंकलाब आया जो सही मानों में इंकलाब जिन्होंने हर चीज़ उखाड़ कर फेंक दी वो ईरान में था, और ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो इस क्यों ये मकबूल है, ये मुस्लिम दुनिया में सिर्फ मकबूल नहीं है ईरान का इंकलाब, आपको पता है जो कोल्ड वर्ल्ड वार की जब ख़त्म हुई है तो उसके बाद पॉलिटिक्स में दो टर्म्स आए हैं, ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब जो अमीर ममालक जो अमीर ममालक की सिंफ में आते हैं उस तरफ आते हैं, और साउथ जो दुनिया के तरक्की पजीर ममालक हैं, जो पहले सारे कॉलोनियल सिस्टम के जीरे नजर रहे हैं, बहुत सारे रहे हैं और बहुत सारे या पार्शियली रहे हैं। जैसे ईरान कभी कॉलोनियल सिस्टम के अंदर नहीं रहा,
नहीं रहा,
लेकिन इसके वसाइल को लूटा जाता रहा है। कभी बरतानिया लूटता रहा है एक तरफ से, कभी रूस लूटता रहा है, बहुत सारे और जंगें भी फुल वार तो नहीं की गई, मिनी वार मुसलत की गई हैं। बिल्कुल
बिल्कुल।
तो ये इन सारे लोगों को, इनको कहते हैं साउथ, ग्लोबल साउथ। जब ईरान का इंकलाब आया तो सारे ये ग्लोबल साउथ में भी एक बहुत बड़ी इसकी मकबूलियत हुई और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिली उन ममालिक को भी। और उसके बाद आप देखें जो जो लातिनी अमेरिका के ममालिक हैं उनमें बहुत सारे इंकलाब आए। और इससे पहले ईरान के इंकलाब से पहले जो सिर्फ एक अगर मिसाल मिलती है मज़ाहमत की और जद्दोजहद की अमेरिका के इंपीरियलिस्ट डिज़ाइंस के खिलाफ, तो वो क्यूबा किया है। मैं समझता हूँ क्यूबा और ईरान, और उसके बाद फिर और ममालिक आए, मसलन बोलीविया आया, वेनेजुएला आया, और बहुत सारे ममालिक ने ज्वाइन किया, इसलिए इसकी अहमियत है।
बहुत बहुत शुक्रिया गुलजमस हुसैन साहब। गुफ्तगू हो रही है हम लोगों के ईरान के इस्लामी इंकलाब के हवाले से, और एक बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं एक नए पहलू से उस पर नज़र डालें। चलते हैं खुर्रम के पास, देखते हैं क्या लाएँ हमारे लिए।
जी बहुत शुक्रिया। और अभी तो मैं जो है यहाँ इजाज़ साहब हुसैन साहब ने जो है मुबारकबाद पेश की है रब मुअज़्ज़म को और ईरानी कौम को,
इंशाल्लाह सबको
जो ईरानी इंकलाब है उस सिलसिले में। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये ईरानी कौम तक ये इंकलाब महदूद नहीं है, इस इंकलाब के असरात दूसरे कौमों पर भी हुए हैं और दूसरी कौमों को भी बेदार किया है और जालिमों का मुकाबला करने का हौसला दिया है। और जितनी ईरानी कौम इस इंकलाब की मुबारक मुस्तहिक है, मुबारकबाद की, उसी के साथ साथ इस इंकलाब की बरकतें जो हैं दूसरी कौमों पर भी हैं। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। और उसके अलावा कुछ और नाज़रीन ने हमें कमेंट्स दिए हैं, सिर्फ मैं उनको ये बताते चलूँ कि उनके सवालों के जवाब जो हैं हम ज़रूर देंगे, लेकिन जिस दिन हमारे जो ख़ास मेहमान होते हैं, क्योंकि आपका सवाल अगर तग़ज़िये से ग़ज़ाइयत से मुतालिक है तो हम जुमरात के दिन उसका जवाब देंगे। तो इस सिलसिले इसी तरह जो है हम आपके सवालों के जवाब इंशाल्लाह देते रहेंगे।
इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे, याद रखें
जी इंशाल्लाह, बिल्कुल
ज़रूर पूछें
बिल्कुल। और यहाँ पर हमने चलना है, एक वीडियो क्लिप देखना है, थोड़ा सा जो है तरोताज़ा होके आते हैं स्टूडियो के बाहर से, और उसके बाद दोबारा जो है गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जी नाज़रीन आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं, और चलते हैं हसन की तरफ ताकि हसन जो है गुफ्तगू सेगमेंट को आगे चला सकें। जी हसन
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम। हम लोगों की गुफ्तगू हो रही है ईरान के इस्लामी इंकलाब के हवाले से, या में अशरे फज्र चल रहे हैं और ईरान के इंकलाब की 35वीं सालगिरह, 35 साल तक हज़ारों मुश्किलात ईरान ने झेली ताकि यहाँ तक पहुँचे, और आज इस तरह हो गया है कि यानी बहुत सारे कह सकते हैं आज़ादी के मुखालिफ जो दुश्मन हैं, यानी आज़ादी के जो दुश्मन हैं, इंसानियत के जो दुश्मन हैं, वो ईरान को एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पर देखते हैं। चाहे वो अपने बहरी बेड़े लाके खड़े कर दें और बहाना ये करें कि ईरान के ख़िलाफ़ हम कर रहे हैं और रशिया को कोई हमें नहीं डराना है, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ईरान का नफूज हर जगह बढ़ गया है। काफ़ी हद तक ईरान ने अपने यानी पांव जमा लिए इंसानों के बीच, ये नहीं कि मशीनों के बीच हो जैसे मगरबी ममालिक ने किया, चाहे वो जनूबी अमरीका हो, अफ्रीका हो, दूसरी जगहों पर। इस्लामी इंकलाब का मकसद क्या था? क्या यानी इंसानियत को फ़रोग देना था, या बहरहाल चार टेक्नोलॉजी हासिल कर ली बस, जैसे जुल्म बाकी कर रहे हैं वैसे ही हम भी करें?
तो इस्लामी निज़ाम के मकासद तो वाज़े थे, पहले के एक ऐसी जगह हासिल की जाए, एक इस मुल्क में एक इस्लामी निज़ाम नाफज किया जाए जो लोगों की बहबूद के लिए हो, फलाह के लिए हो। यहाँ पर एक ममलकत के जो वसाइल हैं वो लोगों पर इस्तेमाल हों, ना कि एक ख़ास एक अलीट जो है जो उम्रा का तबका है सिर्फ उनमें इस्तेमाल हों। तो उसके मकासद तो ये थे, एक ना सिर्फ के इस्लामी रियासत कायम की जाए बल्कि इस्लामी रियासत के जो सारे तकाजे हैं, कि जैसे मैंने कहा था कि मैंने एक जगह बात की थी कि जो इस्लामी सिस्टम है ना, इसमें जो दौलत है वो आपके बदन में इस तरह घूमनी चाहिए, सॉरी आपके इस्लामी निज़ाम में मुआशरे में दौलत इस तरह घूमनी चाहिए जैसे आपके बदन में खून घूमता है, सारे हिस्सों को मिलनी चाहिए, जिस हिस्सों को खून नहीं मिलेगा वो सूख जाएगा। तो इस्लामी सिस्टम की ये आइडियल सिचुएशन ये है। ईरान में बहुत हद तक कोशिश की गई है कि इस सिस्टम को फॉलो किया जाए। आपने देखा कि कैसे कैसे कोई भी सदर रहा हो या कोई जो जमा में इकतदार है किसी के हाथ में भी रहा है, उसने एक से एक बढ़कर कोशिश की है कि दौलत जो है लोगों तक पहुंचाई जाए, उसके मुल्क के जो वसाइल हैं, क्योंकि वो मुल्क के वसाइल जो होते हैं उनके मालिक असल तो लोग होते हैं, एक क्लास तो नहीं होती। शाह के ज़माने में आप देखें कैसे कैसे बड़े बड़े महल्लात बने हुए हैं, कैसे कैसे बड़े बड़े बागात बनाए हुए हैं। मसा मैं हैरान हूँ, पार्क जमशीदिए में मैं गया तो मुझे
शुमाली
पता
तेहरान
चला
में जो
जी
है
जी
जी
कि ये सारे का सारा जो पार्क था ये सिर्फ शाह के लिए वक्फ था, इस पर कोई इंसान नहीं आ सकता था, या इंसान से सॉरी कोई आम ईरानियन नहीं आ सकता था, ईरानी नहीं आ सकता था,
अच्छा ये नहीं मालूम
ये
था मुझे।
सिर्फ उनके लिए था। हाँ जी, बादशाह के
बहुत
लिए और
बड़ा पार्क है वो तो।
जी जी और बादशाहों की फैमिली के लिए। फिर मैं
अच्छा
पहले खरज में रहता रहा हूँ तो हमारे करीब ही एक सेब का बाग है जो कई मुरब्बों पर फैला हुआ है, तो कहते हैं जी ये शाह की बहन का था, और शाह की सिर्फ बहन यहाँ पर ना घुड़सवारी कर सकती थी और सैर कर सकती थी, कोई वहाँ कोई और दखल नहीं दे सकता था। कई मरबों पर फैला हुआ बाग जो एक कौम की मलकियत था, इस ममलकत की मलकियत था, वो उन्होंने अपनी बहन 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 को वक्फ कर दिया था। वो कहते हैं जिसका रोल भी कहते हैं बहुत ज्यादा था
बिल्कुल,
ममलकत चलाने
और
में। हाँ जी
उसमें ये नहीं आता, कहा जाता है कि मेन जो ड्रग स्मगलिंग थी उस वक्त
जी
वो उनके हाथ में थी ईरान की, यानी
हाँ, ये
ये
तो
भी
मुझे
मैंने ये
नहीं,
खबर मैंने
अच्छा
पढ़ी है जी।
नहीं पता। तो ये इंकलाब ईरान के असल जो मकासद थे वो तो वाजे थे। अच्छा, ये बात बहुत दिलचस्प है कि क्या वो मकासद हासिल हुए हैं। एक हद तक तो बहुत सारे मकासद हासिल हुए हैं, लेकिन देखें जब आइडियल्स को लेकर आप चलते हैं तो सारे आइडियल्स कभी भी अचीव नहीं होते। एक बहुत हद तक इस्लाम में दूसरा इसके मकासद थे कि इस खित्ते में जो इसराइल की एक वो कहते हैं चुदराहट कायम कर दी गई थी उसको चैलेंज किया जाए, अरब दुनिया को इस्लामी दुनिया को अपने हकूक जो हैं वो दिलवाए जाएं। उसमें ईरान ने बहुत बड़ी जद्दोजहद की है, और जाहिर है कुछ चीज़ों में आप जद्दोजहद कर सकते हैं, वो जो पूरी तौर पर कभी भी हासिल नहीं होती। ईरान ने अपनी जद्दोजहद में कोई कमी कोई कसर कोई कजी नहीं छोड़ी, ये सबसे बड़ी दिलचस्प बात है। पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे फेसबुक की और ट्विटर की और किस तरह इसको जासूसी के
जी
लिए
बिल्कुल,
इस्तेमाल किया जाता है। तो एक हसना आपको मैं बात बताऊं, ये बड़ी दिलचस्प है कि मैंने बताया था कि फेसबुक को ट्विटर को इसको लोगों का से एक मेगा डाटा कलेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिसको स्टोर किया जाता है, और उस डाटा को जो स्टोर किया जाता है उसको मेटा डाटा कहते हैं।
जी
तो उस मेटा डाटा के मुताबिक आपको मैं कुछ दिलचस्प हकायक बताता हूँ ईरान के बारे में। पहले आए ये एक सवाल है कि 10 सालों से, पिछले 10-15 सालों से आपको पता है कि ईरान पर हमेशा हमले की बातें आती रही
जी
हैं,
बिल्कुल,
होती रही हैं, हमेशा थ्रेट्स होती हैं, इस माह हमला हो रहा है, अगले माह हमला हो रहा है, या अगले साल, या 6 माह के बाद प्लान हो रहा है। और बहुत बड़े बड़े जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं वो ये रिपोर्ट जारी करते रहते हैं। मसद सैमूर हर्च जो दुनिया का एक माना हुआ स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है, मुझे याद है उसने एक दफ़ा कहा कि 6 माह बाद ईरान पर हमला होना है, बिल्कुल इसकी सारी प्लानिंग कर ली गई है, उसने अपने न्यूयॉर्कर में एक बहुत बड़ी बड़ी लंबी रिपोर्ट में लिखा। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, या ऐसा क्यों नहीं हो सका, ये एक दिलचस्प सवाल है कि क्या ये लोग ये गलती करते रहे हैं, ये इतने बड़े जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, क्या गलती इनके पार्ट पर थी, इनको नहीं पता था, ये मिसजज करते रहे हैं, या वाकई हमले की तैयारियां थी। तो हमें जो पता चला है कि वाकई हमले की तैयारियां थी और हर बार थी, ये लोग गलती नहीं कर रहे थे, जो गलती थी वो वहां थी। आपको कोई और
हाँ
करना है
वो
तो
बिल्कुल नहीं, मैं इस
जी जी
वक्त हम लोगों के पास महदूद है, तो आप
जी
अगर
जी
गुफ्तगू अपनी
जी
समय
जी
के लिए।
तो फेसबुक और इस मेटा डेटा की जो कलेक्शन हुई थी इससे उन्होंने कुछ नतायज अखज किए, नतायज ये अखज किए कि ईरानियन कौम जो है आज भी जो है यूनाइटेड खड़ी है। जब अगर किसी ने हमले की जरूरत की तो ये सारी की सारी कौम जो है सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएगी जारहियत के खिलाफ। तो
बिल्कुल
इस हवाले से कभी भी जरूरत नहीं हुई, क्योंकि जब भी किसी कौम पर हमला होता है तो ये देखा जाता है कि इनमें इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं, इनमें खाना जंगी की सूरत हाल है, ये इतने ज़यीफ या इतने कमज़ोर हो गए हैं कि जो बाहर से कोई ताकत हमला करे और ये फौरन जो है एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, या मसलन बरसरे जंग हो जाएं। तो उन्होंने देखा कि अगर ईरान पर हमला होता है तो ये थोड़े बहुत इख्तलाफात हैं भी जो किसी भी जमहूरी मुआशरे में
माशरे
होते
में हो
हैं,
सकते हैं जी।
और एक अपोजिशन में है एक जो है पावर में है, तो दोनों के इख्तलाफात तो हमेशा रहते हैं एक। लेकिन उन्होंने देखा कि जब इस पर ईरान पर अगर हमला हुआ तो ये सारे इख्तलाफात मिट जाएंगे और ये एक होकर मुकाबला
उनके
करेंगे।
सामने डट
तो ये
जाएंगे
सबसे बड़ी वजह थी कि कि इन सारे सालों में ईरान पर हमला नहीं हो सका।
बहुत बहुत शुक्रिया गुलजमस हुसैन साहब, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ। चलते हैं खुर्रम के साथ, ज़्यादा वक्त मेरे ख्याल में नहीं है हम लोग के पास।
चलते हैं हम लोग भी इस तरफ और कुछ मज़ेदार बातें आप लोगों की खिदमत में लेके आया हूँ। थोड़ा सा मौजू से हट के हम बात करेंगे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एक भेड़ की तस्वीर है और इसका नाम जो है रखा गया है श्रेक, और ये श्रेक कार्टून वाली भेड़ नहीं है, ये जो है इसका नाम दिया गया। और इसका नाम क्यों दिया गया है, नाम इस वजह से दिया गया है कि आप इसके जो इसके माशाल्लाह जो इसके बदन पे जो ऊन आ गई है उसको अगर देखेंगे तो उसकी ये वो वजह है जिस वजह से जो है इसको श्रेक का नाम दिया गया। हुआ ये इस बेचारी भेड़ के साथ, बेचारी तो नहीं है, बहुत तेज़ किस्म की भेड़ है, ये करती ये थी कि बारह पहले ये बताते चलूँ कि न्यूजीलैंड के मुल्क में जो है बारह ये भेड़ जो है आपको जो नज़र आ रही है ये करती ये थी कि जब भी हर एक साल के बाद इसकी जो है इसके बदन से ऊन जो है वो हटाने का वक्त आता था तो इसको ये बात पसंद नहीं थी, ये उसी एंड टाइम जो है ये भाग जाती थी और कहीं ना कहीं गायब हो जाती थी और कहीं छुप जाती थी। और 6 साल तक कहते हैं जी ये जो है इसने यही तमाशा लगाया और 6 साल के बाद बिलाखिर जो है इसको जब इसके बाल काटने का टाइम आया तो उसको पकड़ लिया गया और इसके बाल काटे और कहते हैं कि तकरीबन 30 किलो इसके ऊपर से जो है ऊन उतरी और कहते हैं कि तकरीबन 20 लोगों का जो है 20 लोगों के लिए जैकेटें बनाई जा सकती हैं ज़बरदस्त किस्म की इसके बदन से जो ऊन निकले। और एक और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि ये जब इसके ये 6 साल के बाद जब इसको पकड़ लिया गया तो कहते हैं कि जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी उससे भी इसने मुलाकात की है और जाके और बहरहाल इसको जो है ये वो हासिल है कि पर ये देख सकते हैं आप जो है कैसे जो है इस बेचारी की ऊन उतारी जा रही है और चंगी भली जो है मोटी ऊन है। तो ये एक दिलचस्प खबर थी, मैंने कहा ये आपकी खिदमत पे जो है इसको भी पेश कर दिया जाए। तो ये तो जो है श्रेक के बारे में थोड़ी सी खबर थी। चलते हैं छोटा सा एक वक्फा लेंगे यहाँ पर, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा जी। एक नई सब्जी के बारे में बात करेंगे जो जानी पहचानी नहीं है लेकिन यह है कि बहरहाल आपको बताना उसके बारे में ज़रूरत है। इसको कहा जाता है ब्रसल स्प्राउट का नाम इस सब्ज़ी को दिया जाता है। इसके कुछ फ़वाद हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, अलबत्त जो है शायद थोड़ा ये मुश्किल से मिले पाकिस्तान हिंदुस्तान में लेकिन बहरहाल अगर मिलती है तो इसका जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको आपकी खिदमत में। सबसे पहला फ़ायदा इसका जो है वो ये है कि जिन लोगों को ये एहसास है कि उनके बदन में चर्बी बहुत ज़्यादा है तो वो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि कहा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल को और जो चर्बी है उसको कम करने में ये बहुत ज़्यादा मदद देती है। और इसके अलावा एक और जो चीज़ इसमें लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि हमारा जो निज़ाम इन्हज़ाम है उसको बहुत अच्छा रखती है। उसकी एक वजह जो है वो ये है कि हमारे निज़ाम इन्हज़ाम में एक जो है एक जूस एक्सक्रीशन होती है जो हमारे खाने को हज़म करने में मदद देती है, उसको कहते हैं बाइल। और बाइल का ख़ास काम ये होता है कि जितनी भी कोलेस्ट्रॉल तेल या चर्बी हम लोग खाते हैं अपने खाने में उसको हज़म करने में मदद देती है। तो ये जो सब्ज़ी है स्प्राउट जिसका नाम दिया जाता है इसको, ये जाके उस बाइल के साथ मिलके खाने को बेहतर तरीके से चर्बी को बेहतर तरीके से हज़म करने में मदद देती है। उसके अलावा एक बहुत और अहम इसका फ़ायदा वो ये है कि DNA जो हमारा बदन के अंदर होता है उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको ख़राब नहीं होने देती, उसमें तब्दीलियाँ नहीं आने देती। इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि कैंसर उसी वक्त होता है जब DNA के अंदर या सेल की जो असल जो उसकी शक्ल है उसमें तब्दीलियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो जब DNA को ये बचा के रखती है तो मुख्तलिफ किस्म के कैंसरों से भी बचा के रखती है। और एक चीज़ जो साबित जिस पर रिसर्च भी हो चुकी है वो ये है कि जिन लोगों को थायराइड के ग्लैंड के मुश्किलात हैं वो इस सब्ज़ी का इस्तेमाल करें जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये थायराइड की जो सिक्रीशंस हैं जो मुख्तलिफ किस्म की उनको बिल्कुल कंट्रोल में रखती है। बहरहाल ये तो कुछ बातें थी ब्रसल स्प्राउट जो सब्ज़ी है उसके बारे में। अब चलेंगे दोबारा हसन की तरफ ताकि हसन जो है अपने गुफ्तगू को आगे चला सकें। जी हसन,
बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम, वक्त हम लोगों के पास बिल्कुल नहीं है गुलजमस हुसैन साहब, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपको हम जहमत देंगे और अगले हफ्ते खुद इंकलाब के सालगिरह के मौके पर इंशाल्लाह अगर हुआ तो आपकी खिदमत में हम लोग रहेंगे। और बहरहाल बहुत ही अहम गुफ्तगू रही नाज़रीन। हम एक चीज़ आपको बस बताते चलें, अभी एक दो दिन पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी एक शख्स से जो इमाम खुमैनी से काफ़ी करीब थे। उन्होंने कहा कि इमाम खुमैनी को, यानी इमाम खुमैनी ने ख़ुद बताया था कि जब वो फ़्रांस में थे आखिरी दिनों में जलावतनी के तो शाह ने उनको मुख्तलिफ़ चीज़ें ऑफ़र की और कहा कि मैं बेहतरीन चीज़ें बेहतरीन खिदमात और जितना पैसा चाहें आपको दे दूँगा। तो इमाम खुमैनी के आँखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने कहा कि अगर आज खुमैनी तुम्हारे साथ यानी मिल जाता है तो यकीनन जो कौम है वो खुमैनी को भी पीछे छोड़ देगी। यानी ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था ख़ुद इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो ये दिखाता है कि इमाम खुमैनी के अंदर जज्बा था, लेकिन जब तक अवाम में बेदारी न हो तो लीडर्स भी कुछ नहीं कर सकते। और यकीनन हिदायत सही तौर से अवाम के ही हाथ में। खुर्रम चलते हैं खुर्रम के पास।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हसन वक्त हुआ एक छोटा सा वक्फा लेने का, और जिसमें कुछ है खूबसूरत सा हमें एक वीडियो क्लिप दिखाया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है, तो चलते हैं वो वीडियो क्लिप देखते हैं, उसके बाद दोबारा खेत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। आप लोगों ने खूबसूरत सा वीडियो क्लिप देखा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वक्त हुआ है हमारा कि हम लोग चलें हमारे जो मजहबी उमूर के माहिर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, मौलाना सैयद सना अब्बास साहब, उनसे मुलाकात करें। मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ मौलाना साहब।
मैं भी
अलैकुम अस्सलाम, हम भी आपकी खिदमत में और तमाम सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करते हैं। और सबसे पहले हम दे फज्र की तमाम आप कारमंदान को और तमाम सामईन को मुबारकबाद पेश करते हैं।
बहुत मुबारक हो।
जी
मौलाना साहब, जैसे कि आपको पता है हमारा हफ्ते का मौजू जो है वो चल रहा है खुद गर्जी या बुरी आदत से बचना, और उसमें जो है हमने जो मौजू इंतखाब किया है वो खुद गर्जी का है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जैसा कि आपने सवाल किया कि खुद पसंदी उजब और यानी खुदखाही खुदगर्जी जो है, ये तकरीबन सब एक ही माना में यानी खुद पसंदी, इंसान जो खुद गर्द इंसान है उसकी रवायात और आयात में मजम्मत की गई है। और इसकी जो है अगर देखा जाए तो इसके बहुत से अवामिल ऐसे हैं जो इंसान को जो है हलाकत की तरफ ले जाते हैं। कहीं रसूल इस्लाम जहाँ पर जिक्र करते हैं कि यानी तीन चीजों का जहाँ पे जिक्र किया कि बुख्ल और खुद पसंदी और खुदगर्जी को जो है इन्होंने हलाकत से ताबीर किया कि यानी ये इंसान को हलाकत के रास्ते की तरफ ले जाती है। और यही खुदगर्जी इंसान के लिए बायस होती है कि जब इंसान खुदगर्ज हो जाता है, अपने अमाल के ऊपर तकब्बुर करने लगता है और तब खुदा की तमाम जो है नेमतों से वो दूरी वो उसकी अख्तियार होती जाती है, क्योंकि इंसान अपने को खुदगर्ज समझ के अपने हर अमल को बेहतर और बेहतर समझता रहता है।
सही
मौलाना साहब, इस अमल का यानी खुदगर्जी का माशरे पे क्या असर पड़ सकता है? अगर एक इंसान खुदगर्ज हो तो यकीनन असर उसका होता है दूसरों पर भी, क्या बुरे असरात यानी लायक हो सकते हैं माशरे को?
जी बिल्कुल, इसके बुरे असरात हैं और माशरे के ऊपर इसके लाख हो सकते हैं, क्योंकि जब इंसान खुदगर्जी दिखाएगा तो माशरे में उसकी खुद अहमियत, खुद उसके लिए जो जरर वाक्य हो रहा है कि हर इंसान खुदगर्ज इंसान से और इस तरह के इंसान से दूरी अख्तियार करता है, और माशरे में खुद जो उसकी जो इमेज बनी हुई है वो इमेज खत्म होती जाती है और माशरा ऐसे इंसान को अपने से दूर रखना चाहता है। लेकिन यही शख्स जो है ऐसे शख्स की जो है माशरत जो है यानी इसके साथ उठना बैठना भी मना किया गया, क्योंकि बुरी आदतें जो है रज़ाइल अख़लाक़ी जिनको हम कहते हैं वो बाज़ औक़ात जो है अच्छे इंसानों के ऊपर अपनी तासीर डाल के जो है उनको भी अपने जैसा बना देती है।
अच्छा
सही। मौलाना साहब कहीं कहीं कहते हैं कि कहीं पर तो अपना अपनी शख्सियत का अपने आप को तरजीह देना जरूरी है, क्या कैसी जगह कहाँ कैसे कहाँ पर आप कह सकते हैं कि जी यहाँ पर हम अपने आप को तरजीह दें लेकिन इस जगह पर जो है हम दूसरों को तरजीह दें?
देखिए तरजीह देने का सवाल जहाँ पे रवायात और आयात में मिलता है, इंसान को अल्लाह ने जो अशरफुल मखलूकात बनाया, लेकिन वो जो अल्लाह ने मर्ज और रेड लाइन जो मुशख्खस की है, दायरा जो खींच दिया, उसके अंदर इंसान जहाँ जहाँ पे बताया गया है सिर्फ इंसान वहीं पे यानी ऐसी जगह पे जहाँ पे यानी अगर वो अपने आप को जाहिर ना करे तो शायद दीन और इल्म और इस्लाम का बन के गया है, तो वहां पे इंसान अपने आप को जाहिर करे ताकि लोग समझे कि इस्लाम और दीन मुबीन इस्लाम का भी एक ऐसा नुमाइंदा है ताकि लोग समझे। लेकिन जहाँ पे इंसान अपने आप को सिर्फ इसलिए जाहिर करना चाह रहा है कि उसकी शख्सियत पहचानी जाए, वो सबसे ऊपर नुमाया हो मजलिस में, और जैसा कि रवायात में मिलता है कि वो इंसान जो अपनी जगह से आगे बैठना चाहता है लोग उसको जो पीछे कर देते हैं, लेकिन एक इंसान का मर्तबा आगे है, वो पीछे बैठा लोग उसको बुला के आगे अपनी मजलिस में जगह देते हैं।
सही। बहुत मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत आपने आखिरी में बात की, और उम्मीद करूंगा कि हमारे नाज़रीन को भी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जो है अगले प्रोग्राम में भी आपसे रابطہ करेंगे, आपसे जो है मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। बहुत
इंशाल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कल के मेहमान के बारे में बता दें कि डॉक्टर रिजवाना हुसैन हैं और गुफ्तगू करेंगी बुरे आदतों के छोड़ने के बारे में, हफ्ते के मौजू के बारे में। तो अशरफ फजर, फिर से आप सबको मुबारक हो, हमें इजाज़त दीजिए।
खुदा
खुदा हाफिज़।